था कि बताया याद से शांति मिलती और पढ़ाई में सुख मिलता है, तो शांति पहले और सुख बाद में होगा, मगर बोलने में तो आता है सुख शांति।
आप सुख और शांति यहाँ से लेकर के जाएंगे कि वहां जाकर के सुख लेंगे?
यहाँ से
मना, भले दुनिया में विनाश होता रहे, दुनिया में हाय गैया तोबा कितने भी होती रहे, मनुष्य कितने भी दुखी होते रहे, लेकिन आप कैसी स्टेज में रहेंगे? हैं? सुख स्वरूप की स्टेज में रहेंगे या शांत होकर बैठेंगे?
इसलिए सुख पहले
है,
इसलिए सुख पहले
आप जब दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा, विनाश हो रहा होगा, तो आप शांति की स्टेज में शांत होकर बैठेंगे या जो दुखी है उनके दुख को दूर करने में भी लगे रहेंगे? है क्या
ठीक,
क्या ठीक है,
सुख मिलेगा पहले?
हाँ, हम भी सुखी रहेंगे, हमारी आत्मा और वाइब्रेशन हमारे सुख में ही होंगे, और हम जहाँ जाएंगे वहाँ लोगों को हमारे पहुँचने से राहत मिलेगी, सुख की अनुभूति होगी। तो हम सुख में ही स्टेज में है या शांति में स्टेज में?
सुख नहीं जमवा लेता है।
हाँ जी,
तो भाई बाबू ये ब्रह्मा के पांच मुख हैं,
और जो हम रहेंगे भी सुखमय स्टेज में, क्या सुखमय स्टेज में शांति नहीं होती है? सत्युग में शांति नहीं होगी? शांति तो होगी, क्योंकि आत्मा
शांत स्वरूप,
शांत स्वरूप। वहाँ आत्मिक स्थिति, आत्मा की याद होगी या नहीं होगी? तो बिना आत्मा की याद के, बिना याद के तो शांति हो नहीं सकती, चाहे इस दुनिया में और चाहे वहाँ सत्य की दुनिया में। जहाँ सुख है वहाँ शांति तो समाई हुई है।
बिना ज्ञान के शांति नहीं होगी, शांति के बिना सुख नहीं होगा।
हाँ जी, जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो भी याद में टिकेंगी या उनमें ज्ञान होगा? याद में टिकेंगी तो शांति उनको भी मिलेगी, लेकिन ज्ञान नहीं होगा। निश्चयात्मक बुद्धि से उनके अंदर ये बात नहीं होगी कि यही हमारा बाप है, साकार बाप है मनुष्य सृष्टि का, साकार में मनुष्य सृष्टि का कल्याण करता है, ये उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो ज्ञान ही नहीं बैठा तो सुख कहाँ से स्वर्ग का मिलेगा?
ब्रह्मा जी के पांच मुख हैं, दो आदि के, दो अंत के, एक बीच का। उसी प्रकार से हनुमान के पांच मुख बताए, पांचों जानवरों के, ऐसा क्या
कोई अलग अलग थोड़े ही है?
मनुष्य
हनुमान कहो, गणेश कहो, ये तो धारण कौन करते हैं? हनुमान और गणेश जो रूप है वो कलयुग में पूजा जाता है या द्वापर में पूजा जाता है? कलयुग में ही क्यों पूजा जाता है? क्योंकि कलयुग की शूटिंग जब हुई है तो इन्होंने भी जानवरों जैसा पार्ट हो गया, जानवर बुद्धि जैसे पार्ट बजाए। जब द्वापर युग की शूटिंग होती है तो रामकृष्ण की आत्मा जानवरों जैसा पार्ट नहीं बजाती है।
बाबा जब हम मंदिर में इस तरह से मंदिर में पूजा करते हैं, तभी हमें भगवान हमें 84 के जन्म से मुक्ति दे दो, लेकिन इसमें कहा है कि वे 84 जन्म होंगे, इसका कुछ
तब जानते थे? जब 84 जन्मों से मुक्ति मांगते थे तब ये जानते थे कि 21 जन्म उनमें से ऐसे भी हैं जहाँ सुखी ही सुख होता है, दुख नहीं होता है, जानते थे? इसीलिए मानते थे कि हमें 84 जन्म, वो समझते हैं 84 जन्मों में भी दुखी ही दुख होता है, इसलिए वो दुखों से मुक्ति मांग रहे हैं।
लेकिन
अगर ये समझे कि 84 जन्मों में से 21 जन्म ऐसे भी हैं जहाँ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं होता है, तो आत्मा सुख की चाह करती है या दुख की चाह करती है? आत्मा तो सुख ही मांगेगी। हाँ, ये जरूर है जब तक बुखार है तब तक बुखार से निजात पाना चाहते हैं, पहले बुखार छूट जाए, कोई रसगुल्ला दे खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि शरीर तप रहा है, ऐसी तपत की स्टेज में जबकि घर जल रहा है, बच्चे जल रहे हैं और कोई हम 36 प्रकार के भोजन ले आए, ले पहले खाना खा लो, तो खाना खाएगा कोई? सुख नहीं भोगा जा सकता। इसलिए पहले दुखों से निजात चाहिए, दुखों से छुटकारा चाहिए, दुखों की दुनिया से छुटकारा माना शांति। जब बुखार उतर जाता है तो शांति।
ये बाबा जैसे अब अपन इस ज्ञान में आ गए हैं, ये इसके बाद में जो हमारे और भी जन्म होंगे 21 जन्म के बाद इतनी यातनाएं तो भोगनी पड़ेगी ना, 9 महीने घर में रह करके
तो क्या हुआ? घर में होती है कि बाहर? गर्भ महल होता है, वहाँ तो न माँ को दुख होता है और न बच्चे को रोते हुए पैदा होना पड़ता है, वहाँ तो शरीर ही सतोपधान बन जाता है। यहाँ तो गोमूत्र की पैदाइश है, शुरुआत ही उसकी दुख से है, अशक्ति से है, तो सारा जीवन अशक्त और दुखी आदमी होता है। जिसकी शुरुआत ही सुख से है वो आदि मध्यंत भी सुखी ही सुख में रहते हैं।
बाबा ये पांडव का गाय ने 3 पैर पड़ेगा तो इसका भेद क्या है?
पांडवों की शुरुआत कहाँ से हुई है? अरे पांडवों की शुरुआत भी तो कहीं से हुई होगी, पांडवों की पैदाइश भी तो कहीं से हुई होगी, पंडे से शुरुआत हुई होगी ना, मुख्य पंडा है कि नहीं? पांडवों में मुख्य पंडा कौन है? है? अरे अर्जुन का रथ गाया हुआ है, कहते हैं ना किसके रथ में आया? अर्जुन के रथ में आया। फिर कहते हैं पांडवों में एक युधिष्ठिर ही ऐसे थे जो जीते जी स्वर्ग में गए, माने पांडवों की भी कैटेगरीज हैं, एक जैसे ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उनमें मुख्य पार्टधारी जो है वो चाहे युधिष्ठिर का पार्ट कहो, चाहे अर्जुन का पार्ट कहो, चाहे भीम के रूप में सारी दुनिया के जितने भी असुर हैं, कीचक हैं, उनको मारने वाला कहो, जो आसुरी संप्रदाय हैं, उनको मारने वाला पांडव कौन था? भीम था कि नहीं, जिसने सब राक्षसों को मारा? भीम था, सब असुरों को मारा और सब इतने भी कीचक थे, 100 कीचकों को मारा और 100 कौरवों को, तो पांडवों क्यों नहीं दिखाते है? तो ये जो मुख्य पार्टधारी है पांडवों में, उन मुख्य पार्टधारी पांडवों का पार्ट बजाने वाला भी पहले तो बाप ही है, और उस बाप के लिए पहले गायन होगा कि पहले बच्चों का गायन हो जाएगा? पहले बाप का ये गायन है कि वो जो पांडवों का बाप पंडा है, उस पंडे को 3 पैर पृथ्वी के नहीं अभी मिल रहे हैं? अभी नहीं मिल रहे, भले और सब बच्चों को तो अपना है घर, टिक सकते हैं, टिक के रह सकते हैं, रह रहे हैं, लेकिन उसको अपना घर 3 पैर पृथ्वी का नहीं है। तो यहाँ से गायन शुरुआत होता है, जो बाप के लिए सो बच्चों के लिए, ऐसे नहीं कि बाप की ही ऐसी स्टेज आती है, ऐसी परीक्षा आती है, ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, नहीं, नंबर बार बच्चों को भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना जरूर पड़ेगा, तब पाठ प्रत्यक्ष होगा। ऐसे पाठ प्रत्यक्ष होने वाले बिना परीक्षा के नहीं है। और
बाबा आप कहते हैं कि नहीं, बच्चों को जो है आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए मेरे बच्चों के, लेकिन परिवार में से जब दुख मिलते हैं तो आंसू अपने आप ही
निकल आते
हैं, कैसे
रोकते हैं? परिवार में लगाव लगा हुआ है या नहीं
लगा हुआ है? छोड़ने की कोशिश तो करते हैं,
छोड़ने की बुद्धि में बात बैठी नहीं है कि ऐसे परिवार हमने पता नहीं 84 जन्मों में कितने बनाए हैं। यही एक आखिरी जन्म का तम प्रधान दुनिया का परिवार हमारा है, अभी आर्थिक स्थिति पक्की नहीं हुई है, इसका मतलब आत्मिक स्थिति जब पक्की हो जाएगी तो 84 जन्मों का परिवार याद आएगा, यह सिर्फ एक इसे आखिरी तमो प्रधान दुनिया का परिवार याद आएगा। 84 जन्मों का भी परिवार का कल्याण करना है, यह सिर्फ एक परिवार के पीछे ही लगा रहना जो तमो प्रधान परिवार
को
देने वाले
प्रैक्टिस
अभ्यास है। तो कहते हैं वैराग्य और शीघ्र ये थे, एक तो वैराग का भाव बार बार बुद्धि में लाना है। क्या
वैराग तो आता है,
वैराग आता है लेकिन अकेले वैराग से काम नहीं होगा, ये दुनिया खत्म होने वाली है,
नहीं
इस दुनिया को छोड़ना है,
घर से परिवार से
ये भी आना चाहिए कि प्रैक्टिस हमको करनी है। क्या देवहान की प्रैक्टिस हमने की है 63 जन्मों में, कोई दूसरे ने की है। तो अकेले वैराग से कुछ थोड़ा ही होगा, वैराग तो देखो सन्यासियों ने कितना किया 63 जन्मों में, कितने सन्यासी निकले जो घर बार छोड़ करके जंगल में चले गए, क्या उनका कल्याण हो गया? वो आधा पुरुषार्थ है, संपूर्ण पुरुषार्थ तब होगा जब उनको वैराग भी हो और साथ साथ अभ्यास भी हो, घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है अमृत मिलेगी, कोई नहीं हो रहा उससे संतुष्ट नहीं है कोई। अमृत वेले की प्रैक्टिस जब फाउंडेशन वेला जो है मजबूत हो जाएगा तो हमारा अभ्यास भी पक्का होगा, सदैव हम समझेंगे अपन को आत्मा, और जब आत्मा याद रहेगी तो आत्मा के 84 जन्मों के जो 84 परिवार हैं उनका कल्याण बुद्धि में आएगा। सबसे पहले पहले जन्म का जो ऊंचे ऊंच परिवार है जिसने हमको जन्म जन्मांतर का सुख दिया है तो उसका कल्याण करेंगे, ये तामसी जन्म का परिवार का कल्याण नहीं करेंगे, पहले किसका कल्याण करेंगे? जो पहले पहले जन्म का संगम योगी परिवार है तो उसकी पहचान हुई है, है? फिर तमो प्रधान दुनिया का जो परिवार है संगी साथी है देह के संबंधी है साथ धोखे बाद है धोखा दे के चले जाएंगे, सिंध हैदराबाद में हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो 7-7 तालों के अंदर मेरी है लड़की मेरी बहन है, फिर क्या किया? फिर छोड़ के भाग गए, फिर नहीं लिया, फिर कहाँ परिवार चला गया? तो झूठे साबित हुए या सच्चे? इस दुनिया का तो तमो प्रधान परिवार है, सच्चे साथी जो हैं वो पहले जन्म के अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं, जैसे राम वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा के जो जन्म जन्मांतर के साथी हैं पहले जन्म से लेकर के अगले जन्मों तक भी वो प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं? नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं? कितने हैं राम वाली आत्मा के जन्म जन्मांतर के साथी? कौन है जो पहले जन्म में भी विशेष सहयोगी बनते हैं और 63 जन्मों में भी सहयोगी बनते हैं? नहीं है, है कौन है?
जो सब बैठे
हैं, फिर अष्टदेव कौन से हैं? वो सब भूल गए, वो बहुत दूर की बात है। अभी भी सहयोगी है वो, अभी भी उनको अपने परिवार का मोह नहीं है, लेकिन किसका मोह है? जब से ज्ञान में आए तब से उनको बाप का मोह है, बाप के सहयोगियों का मोह है, लेकिन अपने परिवार के जो देह के संबंधी हैं उनका मोह नहीं है, उनकी बात ध्यान में नहीं धरते, उनके डायरेक्शन पर नहीं चलते, बाप की पता न चली जाए ये बुद्धि में सदैव रहता है। हमारी लास्ट परीक्षा कौन सी है? नष्ट गुण। तो अष्टदेवों का भी मुख्य गुण कौन सा होगा? नष्ट गुण। जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर अब तक भी कोई देहधारी के पीछे पागल होकर के नहीं फिरेंगे, किसके पीछे पागल होकर रहेंगे? उनका जीवन देखा जाए, अगर ये बात उनके जीवन में है आज से लेकर के जब से ज्ञान में निकले तो जरूर अष्टदेव में होंगे।
बाबा अपन तो सोचते हैं लेकिन परिवार के मंदिर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कहते रहते हैं, गांव को गाली तो ऐसे कैसे संभव होगा?
दुनिया गाली देती रहती है सो,
पर ये हमसे सुना नहीं जाता कि हमारे शिव बाबा को गाली ना मिले
ना, दुनिया गाली देती है सो,
दुनिया को तो हम देखने नहीं जा रहे, हम तो अपने
दुनिया दुनिया वाले जो गाली देते हैं वो देखने में नहीं आता,
मैं देखने में नहीं आता,
आपको देखने में नहीं आता, देखते हैं ना उनकी बातें दिल में क्यों नहीं रखते। दुनिया वाले जब गाली देते हैं तो उनको सुना अनसुना क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये हमारे अपने नहीं है, और घर वालों को क्या समझते हैं, ये हमारे अपने, माने अपना लगाव ही अपने को दुख दे रहा है।
बाबा जैसे बेहद के बच्चे मिलते हैं और तो ऐसा लगता है कि ये अपना कोई परिवार, पहले से अपना कोई परिवार बने हुए बच्चे हैं, तो ऐसा तो उसमें मतलब आत्मिक स्थिति होती है, जब ऐसा महसूस होता है
पहले से कोई उनसे अपना संबंध होगा, इसलिए
कभी अपने लगते हैं।
बच्चे लोग संपत्ति दे रहे हैं आजकल, बहुत सीबीआई की और पुलिस की जांच पड़ताल बहुत चल रही है,
तो
उसमें क्या जवाब दिया जाए? वो पूछते हैं आपकी संस्था कौन सी है, आपका हेड कौन सा है?
हमारा संस्था एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव है। अरे तुम्हारे पास तो ढेर पॉइंट है बताने का,
तो बताते हैं।
बीके वाले क्या बताते हैं?
वो कहते हैं बीके वाले भी तो यही बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? सो हम तो फिर जो वो बोलते हैं पहले उनसे पूछो ना कि उनकी तहकीकात करो,
उनकी तो कह हमने 70 साल से कर ली
है,
70 साल से उनको जान रहे हैं।
क्या जान रहे हैं?
आप एकदम से आ गए हो इतने सारे माउंट आबू में,
हाँ सो तो क्या कोई बंधन है क्या? ये सरकारी नियम नहीं है कि कोई भी इंडियन कोई जमीन खरीद सकता है कहीं?
हाँ वो तो बोला है,
फिर विदेशी नहीं खरीद सकते, तो हमको विदेशी समझते हो क्या?
हर आए दिन कभी किसी
तो कौन है ये तो नोटों की ताकत है, जो सीआईडी वाले हमारे पीछे पड़ते हैं, दुनिया वालों के पीछे क्यों नहीं पड़ते हैं? उन आतंकवादियों के पीछे क्यों नहीं पड़ते, उनको क्यों नहीं पकड़ पाते?
वही तो उनको बोला कि क्या गुनाह किया है, प्रॉपर्टी तो खरीदी है, उसमें क्या गुनाह है?
गुनाह तो कुछ भी नहीं है,
फिर भी आए दिन कोई न कोई रूप में आके जांच पड़ताल करते
हैं। तो हमें कोई डर है क्या? हम तो सच जो अंदर से सच्चा है उसको डर किस बात का? तो नोटों की गद्दियां जिनको भी मिलेंगी वो अपना धंधा करेंगे।
तो बाबा वो ये भी तो कह सकते हैं कि पूछे कि भाई जयपुर से आए आप यहीं आके मकान क्यों ले रहे हो?
तो क्या जयपुर वाले ही ले रहे हैं, ऑल इंडिया वाले ले रहे हैं?
यहीं के भी कोई भी आए आपको यहीं पर आके मकान क्यों ले रहे हो?
तो सरकार ने यहाँ की कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखी हुई है जमीन की, पूछो उनसे, कोई खास बात होगी तभी तो यहाँ की जमीन की ज्यादा कीमत रखी है। हाँ तो हमने पहचाना इस जमीन को तो हम खरीद रहे, तुमने नहीं पहचाना तो तुम नहीं खरीद रहे,
तपस्या भूमि है।
वो बात बाद में, वो बात उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठेगी।
वो तो ये कह रहे हैं किसी मंदिर के पास और ये बड़े बड़े मथुरा वृंदावन और इतनी दूर दूर है कहीं भी खरीद लो, यही आके क्यों खरीद रहे हैं? कहीं कह सकते
हैं पाबंदी की झोली है, खरीद रहा है पाबंदी नहीं है ना, ये पाबंदी लगा दो सबके,
कहां में तो स्वतंत्रता का अधिकार है,
वो पाबंदी थोड़ी लगा सकते हैं।
अभी जो मुरली में बताया कि बाप से कोई भी बात किसी की छिपी नहीं रही,
बिल्कुल नहीं छिपी रही, मुरली का वाक्य है ये, ब्रह्मा ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा का वाक्य समझो है कैसे, वो कभी झूठ नहीं हो सकता, वो पत्थर की लकीर है। तो मुरली में ये बात बोली हुई है ब्रह्मा के मुख से, इस दुनिया में कोई भी किसी की बात छुपी नहीं रहेगी, सबका उजागर होकर के सारी दुनिया के सामने आ जाएगी,
सब आत्माओं का
सबका भगवान से छुपाने वाला छुप जाएगा, तो भगवान से छुपाने वाला दुनिया के सामने पदर नहीं हो जाएगा।
बाबा अगर अपनी अवस्था डाउन हो रही है लेकिन हम कहें कि फलाने की वाइब्रेशन से हमारी इतनी आत्माओं की संगत के कारण हमारी
तो ये अनुमान है या ज्ञान है? ये बताओ, ये इस तरह सोचना ये हमारा अनुमान है या ज्ञान है?
अनुमान
है। अनुमान से नुकसान होगा या फायदा होगा? अव्यक्तवाणी में तो बोला अनुमान से होता है नुकसान, ऐसा अनुमान क्यों लगाना?
नहीं, जैसे अन्य आत्माओं के बने हुए भोजन को स्वीकार करते हैं उससे अवस्था डाउन हो रही है
वो तो बाबा ने कहा है, जितना कायदा उतना फायदा। बाबा ने कब कहा कि तुम दूसरों के हाथ का विकासों के हाथ का बना हुआ भोजन खा लो? चलो ब्राह्मण ही है, ब्राह्मण अपने जीवन में अपने घर में कैसे रहता है हमें क्या मालूम, जिनके साथ हम रहते हैं उनका तो हमें मालूम है। जो बाहर के जो बाहर अपने घर में रह रहे हैं उन सब ब्राह्मणों का हमें पता है इनकी चलन कैसी है? नहीं पता है। आज रजिस्टर नहीं आया,
रजिस्टर
वो तो बाबा ने बताया है कि इतने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार वहाँ शरीर छोड़ रहे हैं जो बाप को नहीं जानते हैं, है? तो वो बाप को कैसे जानेंगे? ब्रह्मा बाबा ने बाप को पहचाने बगैर ही छोड़ शरीर छोड़ दिया, तो वो आत्मा बाप को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? पहचानेगी। तो वो तो कोई ना कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाएगी, तो वो आत्मा ही प्रवेश करके अपना पार्ट बजाएगी, क्योंकि वहां तो वो बाप को पहचानती नहीं है, वो ही संस्कार उनकी बैठे रहते हैं अपोजिशन करने के, ये बाप नहीं है। ब्रह्मा कुमारों के अंदर ये संस्कार है कि नहीं अपोजिशन करने के?
तो बाबा सुबह अपन जब अमृत वेला उठने की कोशिश करते हैं ये कारण है?
हाँ जी, वो आत्माएं दबाव डालती हैं
बाबा। हाँ। ये दोनों आत्माएं भट्टी करके जब से आई है दो जब से बीमार पड़ी है, इनके
आत्मा
प्रवेश कर दी
है। आखिर मुकाबला हमारे ही कर्म तो हमारे सामने आ रहे हैं। 63 जन्म में उन आत्माओं के साथ हमने ही कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया है कि वो सत्संग में जाती रही होंगी और हमने उनको सत्संग में अच्छे रास्ते पर जाने से रोका होगा, तो वो आत्मा हमारे से हिसाब किताब ले रही है। तो आप पोजीशन करो, घबराना नहीं है।
जबरदस्ती से आती हूँ
क्या?
जैसे घर में जबरदस्ती से आती हूँ ना, आत्माओं से जबरदस्ती से आती,
तो भी डरना नहीं है। ये सब भूत प्रेत बनने वाले ही तो रावण संप्रदाय है, रावण संप्रदाय कोई दूसरे थोड़े ही है।
जब आप तो बाबा आए थे ना मानसरोवर में, तो उसके बाद हमारे घर में कोई आत्मा नहीं थी, सब चली गई थी जो थी। और जब से ये आने लगी है ना, अब इसको आत्मा ही दिखती है। अब एक दिन मेरे पास आ गई, मेरा पांव पकड़ लिया उसने, बोली मेरे को मुक्ति चाहिए। तो मैंने तो उसको यही बोला, शिव बाबा के पास जाओ, अरे वही मुक्ति देंगे, मेरे पास कुछ नहीं है। और इनको बहुत अच्छी है बाबा, क्लास करने आती है ना तो इसको पता नहीं क्या बात है, औरतें दिखती है।
औरतें भी तो आत्मा ही है,
योग नहीं लगता था।
योग जिस चीज को आंखों से देखते हो वो याद नहीं आता,
वो तो आता है।
तो बाबा को आंखों से देखा हुआ है तो आंखों से देखा हुई चीज याद क्यों नहीं आती?
बाबा आप भी तो
हैं,
आप तो सामने।
दुनिया वालों को आंखों सर में दर्द होता है, तो दर्द के टाइम में क्या कुछ दिमाग शून्य रहता है क्या?
नहीं,
कुछ न कुछ याद करते हैं ना, तो ऐसे ही बाबा को याद करने से और सुखी सुख होना चाहिए।
ये तो भट्टी करने ली तो उस वक्त ही बाबा इसके अंदर आ गया, बहुत इसको परेशान किया।
तो उसका हिसाब किताब है तो आगे
मेरे से इतना क्यों
है? सबके साथ हिसाब किताब है क्या?
एक बच्चा जरूर इसका ठीक हो गया।
जब प्रजापिता वाली आत्मा के साथ ब्रह्मा जैसी आत्मा का हिसाब किताब है तो फिर किसको छोड़ा जाएगा? ये ब्रह्मा कुमार कुमारी किसी को छोड़ने वाले
नहीं है,
नहीं है।
मेरे से तो यहाँ पे बोल दिया कि वहाँ क्यों जाती है, वहाँ क्यों जाऊंगी? मेरे अपने सवाल के अनुसार बोल दिया,
नहीं समझा।
मैं जाऊंगी, मैं
समझाओ उसे क्यों जाती है।
बाबा है, मैं जाऊंगी।
बाबा है कहने से नहीं मानेंगे ना, जैसे तुमने समझा है
सपने में आई होती है।
तो साकार में समझाओ, साकार में भी तुम्हारे साथ रहती है। آپس میں بات نہ کرو یہ دو دو رجسٹر کیوں ہے؟ بعد میں کریں گے آپس میں بات نہیں کر رہی، خراب شوٹنگ ہو رہی ہے.
وہ کہہ رہی میرے سے بولا
گھنٹے گھنٹے میں بات کرو گے تو بھی کلاس کا
بولو نا، ہمت کر کے بولو.
دوسرا آدمی پیچھے بول رہا ہے، اس کی بات ہی نہیں سنائی پڑ رہی. ہاں بولیے. کون
مالا بھی ایک ساتھ مرتے
جو 108 ہیں وہ 12-12 کے گروپ نہیں ہیں، 12-12 کے 9 گروپ ہیں. ارے دنیا میں 12 ہی راشیوں کے منشی کیوں ہوتے ہیں؟ جتنے بھی منشی دنیا میں ہیں 12 راشیوں سے باہر کیوں نہیں ہیں؟ ہیں باہر، سب 12 راشیوں کے اندر ہیں، لیکن کون سے دھرم کے ہیں یہ کسی کو پتا نہیں. تو یہ گروپ جو ہے اس سمے تیار ہو رہے ہیں. ارے وہ ان کی بات تو پوری ہو جانے دو، تو کہہ رہے تھے دنیا میں 12 ہی راشیوں کے منشی ہیں، لیکن جو 12 راشیاں ہیں وہ کس کس دھرم سے کنیکٹڈ ہیں وہ بھی دیکھنا ہے. 9 گروپ ہیں مالا میں اور 12 کے گروپ ہیں، 9 تو 12 نیم 108. جو 9 گروپ ہیں یہ وہی مالا کے مڑکے ہیں، 9 گروپ کے جو بھگوان سے ورسا لیتے ہیں. 10واں دھرم بھی ہے، وہ مالا میں نہیں ہے. وہ کون سا؟ ناسک دھرم. بھگوان کو مانتا ہی نہیں تو ورسا کہاں سے ملے گا؟ تو وہ مالا میں آتا ہی نہیں. تو جو 9 دھرم ہیں وہ کچھ نہ کچھ بھگوان کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس لیے مالا میں ان کا نمبر بن جاتا ہے.
مالا کے اوپر ایک الگ ہوتا ہے نا اوپر،
یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہ جو بھی مالا کے مڑکے ہیں وہ سب پروتی مارگ کے ہیں، کوئی بھی نوتی مارگ کا نہیں ہے. آپ کا پرشن کیا تھا؟ نہیں نہیں، آپ کا پرشن سمادھان ہوا پیچھے. ہاں جو اور دھرموں کے ہیں سب تو سوریہ ونشی نہیں ہیں، چندر ونشی بھی ہیں، اسلام ونشی بھی ہیں، بودھی ونشی بھی ہیں، کرسچن ونشی بھی ہیں. تو جو اور دھرموں سے کنیکٹڈ ہیں ابھی بھی کنیکٹ ہو رہے ہیں، برہمن جیون میں بھی اور دھرم والوں سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں. شیو بابا کی بات آدھی بات شیو بابا کی مانیں گے اور آدھی بات اپنے گروؤں کی مانیں گے، یا جن سے رج رج کے باتیں کرتے ہیں ان کی باتیں مانیں گے، دل کی بات ان گروؤں کو دلاور سمجھ کر کے بتائیں گے، بابا کو بابا کو نہیں بتائیں گے. دوسرے دھرم میں کنورٹ ہو رہے ہیں، پھر وہ نیچے کے مڑکو بن جائیں گے مالا کے، اوپر والے مڑکے نہیں بنیں گے. تو گروپ تیار ہو رہے ہیں ابھی، آگے آنے والے ٹائم میں 9 گروپ کے لیے دکھائی پڑیں گے، ایڈوانس پارٹی میں بھی دکھائی پڑیں گے.
بابا مالا کے اوپر جو دو
ماتا جی کو پوچھنے میں پہلے، ہاں
میں اس کہتی ہوں کہ دو کنیا دکھی میرے کو صبح اور دو ماتا آئی.
اچھا
انا اور ایک بھائی بھی آیا.
اچھا
اور آ کے میرے کو نا گیان سنانے ملی.
اچھا
کنیا تو گیان سنانے لگے تو میں نے ان کو کہا کہ اور سناؤ، چلو اس کے آگے سناؤ، اس کے آگے سناؤ، یہ میرا سنا ہوا ہے، یہ میرا سنا ہوا ہے، ایسے کر کے وہ کنیاؤں کو میں نے کہا وہ تو چپ ہو گئی، بولے ایسے ایسے آ کے تم نے کہیں گیان سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں، ہماری گیتا پاٹھشالا چلتی ہے. ایک بھائی آیا اور بولتا ہے مجھے मुझे दिखाओ, चलो आपकी गीता पाठशाला। तो मुझे मैं उसको ले जाके दिखाने लगी तो बोला मैं मुरलिया दो मेरे को, मैं छीन के ले जाऊंगा,
छीन के ले जाऊंगा
मुरलिया को, छीन के ले जाऊंगा।
तो हमारे यहाँ मुरली कागज की होती नहीं,
तो बोलता है
तो थर्ड क्लास मुरली।
हाँ मैं तो ना हमारे तो गीता पाठशाला चलती है, चल ऊपर दिखाती हूँ तेरे को। उसको ना वहाँ पे बोला मेरे को मुरलिया दे दो, नहीं तो मैं फोन करके और कह देता हूँ कि वहाँ पे ऐसे ऐसे एडवांस ज्ञान करना है।
फोन करके किसको?
पता नहीं
किसको, वालों को
अब क्या पता नहीं किसको क्या। भाई को जैसे मुरलिया छीनने लगा ना मैंने उसका गरीबन पकड़ के बाहर निकाल दिया।
बाहर निकाल दिया, पावरफुल आदमी, कमजोर आदमी थोड़ी बनना चाहिए। चला गया है,
उसने नहीं दिया उसको गीता पाठशाला।
तो भूत प्रेत है, जितना डरा उतना डराएंगे, भय का भूत होता है।
उसका लेने का क्या फायदा है?
वो ना बोला ना मुरलिया छीन के ले जाऊंगा।
क्यों? ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला नहीं होती है तो नहीं आ जाते हैं? ये चित्र हमको दे दो,
मैं नहीं दूंगा।
ये लिटरेचर हमको दे दो।
किसका है? फोन क्या थाने में चल चल गई।
अरे आइए भैया, सपने की बात बता रहे हैं, ये तो सपने की बात खाने में कहा ले जा रहे
हैं।
खाने में भी ले जाओ तो ये तो नोट ऑफ गड्डियाँ पहले ही खाने में दे देते हैं।
बाबा ने मुरली में बताया, पुलिस यहाँ फोन
कर, वो फोन करके किसको बता रहा था? किसको कह रहा था?
उनको ब्रह्मा कुमार हेड ऑफिस में माउंट आबू। माउंट आबू
सुबह ना बहुत परेशान करेंगे, दो आदमी
वो परेशान होने वाले हो क्या? हम परेशानी दुनिया की दूर करने वाले हैं क्या? परेशान होने वाले
वही ऊपर की आत्मा ही है।
जो 108 की जो माला होती है उसके ऊपर जो दो फूल होते हैं ना, दो और मन के होते हैं।
हाँ जी,
वो कौन है?
आप ही तो बताया, आप सोते रहे थे क्या? आप बात करते रहे थे। माला के ऊपर जो दो मणके होते हैं जुड़े हुए, काई की यादगार, प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। जो भी मणके हैं माला में वो सब मणके प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, निवृत्ति मार्ग वाला कोई मणका नहीं। हाँ
बाबा, जो एक से आठ की मणके अलग है और आठ मणके अलग थे एक ही माला में।
अरे
माला में
जो आठ है वो 108 में भी है, फिर वो 108 16,000 में भी है। 16,000 की माला कही जाती है, 16,108 की कही जाती है, 16,108 की कही जाती है। 1,008 में भी वही आठ जुड़े हुए। जो 9,00,000 प्रजा बनेगी उसमें भी वो जुड़े हुए हैं, 9,16,108।
बाबा इनका ये पूछना है कि 108 की माला में अलग ही है, आठ अष्टरतन है।
वो आठ जो है वो हर एक माला में जुड़े हुए हैं। जो 108 है वो अपने से नीचे वाली सब मालाओं में जुड़े हुए हैं।
जो लास्ट में सब सतयुग में जाएंगे तो 4,50,000 जाएंगे, 9,00,000 जाएंगे।
जब 4,50,000 सतयुग में उतरेंगे, परमधाम से धीरे धीरे उतरेंगे ना, तो उनके साथ जो जन्म लेने वाले हैं वो भी उतरेंगे साथ साथ,
मतलब 9,00,000।
हाँ जी, थोड़ा गैप होगा, अंतर होगा।
जन्म तो बाबा जोड़े को देंगे ना,
जन्म देंगे, जन्म देने वाले भी तो जोड़े होंगे, जन्म देने वाले भी जोड़े होंगे और जन्म लेने वाले भी जोड़े होंगे। जन्म देने वाले पहले बर्फ से बाहर आएंगे, उनकी कंचन काया पहले बनेगी, फिर जो उनके बच्चे बनने वाले हैं वो उनमें प्रवेश करेंगे।
वो बर्फ में से नहीं है, वो परमनाथ
हैं। वो कैसे बर्फ में आ जाएंगे? उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे? उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया जो उनके शरीर सुरक्षित रहे। कहाँ जाता है?
मधुबन है, मतलब
यूपी में।
यूपी
में मधुबन
कहते हैं,
क्या कह रहे हैं? अच्छा वृंदावन में जो भक्ति मार्ग वालों ने मधुबन बनाया है उसमें ये मान्यता बनाते हैं कि वहाँ जो कोई रहने जाता है अगर अगर वहाँ कोई रहेगा जाकर तो खलास हो जाएगा,
पागल हो जाता है या जिंदा नहीं है।
अच्छा
तो मधुबन में थोड़ी राधा कृष्ण के मंदिर
है,
कंपनी यादगार है ना,
क्या
ये जो मर जाता है या पागल
हो जाता है। हम भी तो मधुबन में वहाँ वृंदावन में होकर के आए हैं, अच्छा हम क्यों नहीं मरे है, भूत आ जाएंगे भक्ति मार्ग में ऐसी बहुत सी ढेर सारी बातें चलती हैं। और यहाँ बेहद का मरना है या हद का मरना है, यहाँ तो बेहद का मरना बाबा ने सिखाया, कैसे मरेंगे, जीते जी जीते ही मरेंगे, देवान से मरेंगे, तो वो मरना नहीं है, नहीं मरना चाहते है, मरना चाहते कि नहीं है, मरना चाहते हैं, देवान से मरे तो अच्छी बात है ना, तो मधुबन में जाना भी अच्छी बात है।
गीता पाठशाला में दो व्यक्ति ऐसे हैं जो रोज क्लास तो करते हैं लेकिन वो जमीन पे नहीं सो सकते और कंपनी जाना चाहते हैं लेकिन उनको वो कहते हैं कि हम नीचे जमीन पर नहीं सो सकते।
अच्छा देवान को छोड़ सकते हैं कि नहीं,
तकलीफ
है, तकलीफ तो रहती है लेकिन देवान को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, ये तो बताओ, वो इस दुनिया में रहते रहते देवान को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे,
छोड़ते ही होंगे ना, योग करते होंगे, योग करते होंगे तो देवान से मुक्त होकर
देवान छोड़ेंगे, जीते जी
जीते जी
देवान जीते जी देवान छोड़ना, तो ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते कि देव हम जमीन पर सो करके रह सकते हैं, जमीन में और चारपाई में अंतर क्या है, क्या अंतर है, सिलपट में सोएंगे बिना गद्दे के,
मोड़ करके बैठ नहीं सकते,
मोड़ करके बैठ नहीं सकते, तो सारा दिन क्या करते हैं,
खड़े 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 रहते हैं या कुर्सी
24 घंटे खड़े रहते हैं,
24 घंटे
खड़े रहते हैं क्या,
खड़े नहीं कह रही हूँ ना, मुद्दे पर बैठते हैं, या पर बैठते
हैं, वो बैठने की बात छोड़ दो, हम सोने की बात कर रहे हैं, 24 घंटे में सोते हैं कि नहीं सोते हैं,
पलंग के ऊपर तो बैठ करके कंधे कर देते हैं,
तो पलंग में और गद्दे पे सोने में क्या अंतर है, गद्दा जमीन पे डाल दो और सो जाओ, पलंग और गद्दे में कोई अंतर है क्या, बहानेबाजी बहुत है, यहाँ तीन पैर पृथ्वी नहीं मिल रही है और वहाँ उनको पलंग चाहिए, सोफा सेट चाहिए, चलो अभ्य कवाणी बोला है पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा, अपनी अटैची अपने गोद में ऐसे करके सोना पड़ेगा, ज्यादा देवान दिखाया है तब कैसे चलेगा, तब आप पाँव पसारे की सोना मिलेगा, ऑपरेशन हुआ तो ठीक हो जाएगी क्या, हमेशा ऑपरेशन में ही रहे, चलो
जैसे बीमारी की हालत में भर्ती करने
है,
बीमारी की हालत में भर्ती करने
गए, बीमारी की हालत में क्यों जाए गई भर्ती करने, वहाँ बीमारी की हालत में गए और वहाँ सर्विस छोड़ दिया तो सर्विस हो जाएगी ना,
ऐसी बीमारी नहीं,
हाँ तो पहले ठीक कर लो,
वो क्या शूटिंग हो जाएगी क्या,
बीमारी बीमारी की पहले इलाज करा लो, इलाज कराने के बाद जाओ, कोई कड़ी बीमारी लगी हुई है, कालरा हो गया, अब तुम्हें ज्ञान मिल गया और तुम भागो क्या, हम तो जाएंगे,
जैसे हम भी भर्ती करने गए तो उस समय हमारी हालत बहुत खराब
थी,
हम तो घड़ी लेके चलते थे,
हालत ठीक करके जाओ ना,
फिर ये था ना कि अगर बिस्तर पकड़ लिया तो भट्टी भी रह जाएगी,
वो कुछ गलत संकल्प करने के लिए नेगेटिव संकल्प करने के लिए ज्ञान में बोला गया,
नहीं बाबा
अच्छा संकल्प चला
तो
क्या ये शूटिंग हो गई क्या कि कल्प कल्प जैसे बच्चा जन्म लेते ही बीमार होता है कई बच्चे
ये तो, ये तो आपकी अंदर की खुशी के ऊपर है कि वहाँ बीमारी की अवस्था में गए और बीमारी की अवस्था में जाते हुए भी रहते हुए भी आपका मन खुश रहा
हाँ,
वो तो अच्छी शूटिंग हुई
पर हम भी पलंग पर सोए थे तो क्या शूटिंग गलत कर
क्या हुआ उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है पलंग था तो पलंग मिल गया अब आगे चल के पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा पहाड़ पे तो वहाँ इतने बीमार लोगों को पलंग कहाँ से आएंगे तो यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी है प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी करनी पड़ेगी
और वो वहाँ खरीद करके है वो खरीद करके वहाँ रहे 5-7 दिन तब तक तो उसके ऊपर छोड़ के आ जाएंगे
कौन खरीद करके रहे जो भी मिनी मधुबन है जहाँ एक एक कमरे में 8-8, 10-10 और 20-20 सोते हैं वहाँ पलंग डालने की जगह है सामान रखने तक की तो जगह नहीं है उनके पलंग कौन इकट्ठे करेगा पलंग और सोफा सेट ब्रह्मा कुमारियों वाले
वहाँ तो
36 प्रकार के भोजन स्थूल की शूटिंग नहीं होती है शूटिंग होती है मन की अवस्था की मनसा के वाइब्रेशन की शूटिंग होती है
ब्रह्मा कुमारी
उनको ज्ञान दे
दो इच्छा कर रही है तो उनको ज्ञान दो वो पीछा कर रही तो उनको ज्ञान सुनाओ
सुना में तो सुनना है मानती नहीं
क्या नहीं मानते वो जिंदा ब्रह्मा कुमारियाँ पीछे कर रही है या शरीर छोड़ करके पीछा कर रही है यहाँ तो शरीर छोड़ करके पीछा कर रही है अब तुम्हारे सामने जीते जी वो पीछा कर रही है तो क्या वो क्या चाहती है आपसे
वो चाहती है कि आप ले जामन
करने तो हम क्या उनके उनके घर पर जबरदस्ती उठा के ले आ रहे हैं क्या तो उनको समझाओ मत जाओ तुम उनको समझाओ मत जाओ और हम उनको समझाएंगे जाओ हम ज्ञान सुनाए तुम ज्ञान ही सुना तुम्हारा जो पार्ट है सो तुम करो हमारा जो पार्ट है हम बजाएंगे हमने 63 जन में जो पार्ट बजाया सो ही पार्ट हम अभी भी बजाएंगे और तुमने क्रिश्चियन मुसलमान बन के जो ग्लानी बन करने का पार्ट बजाया है वो तुम बजाओ शूटिंग हो रही है रिहर्सल हो रही है साफ बता दो उनको जो यहाँ ग्लानी करने का पार्ट बजा रहे हैं वो वहाँ ग्लानी करने वाले मुसलमान और क्रिश्चियन बनेंगे मुसलमानों और क्रिश्चियन ने कैसे कन्वर्ट किया हिंदू धर्म की ग्लानी सुनाई कि नहीं सुनाई ग्लानी कर करके सारे हिंदुस्तान को कन्वर्ट कर लिया दूसरे धर्मों में वो ग्लानी करें और तुम ज्ञान सुनो वो अपने से बाज नहीं आए तुम अपने से बाज ना हो
बाबा हमारे यहाँ गीता पाठ साल
तो नहीं चल रही
पर हम झंडा लगा सकते हैं
क्यों नहीं लगा घर घर में झंडा लगा कपड़े का झंडा लगाने से फायदा क्या होगा
ये रहेगा तो बेसिक वाली
है
वो एडवांस वाले और बेसिक वाले का अंतर आ रहा है ना हम लोग एडवांस वाले हैं
अच्छा तो वो बिल्कुल भूल के नहीं आएंगे आपके पास
नहीं आएंगे देखिए ये झंडा कैसा लग रहा है तो हम सुनाएंगे तो भी आएंगे हमारे पास तो सुनाने के लिए तो लगा रहे हैं ताकि वो लोग
ठीक है लगा
इसीलिए बोले हम चाहते हैं कि कोई आवाज पास आए
लेकिन झंडा लगाने के साथ साथ तो झंडे की समझानी भी चाहिए क्या तो तीन मूर्तियों जो दिखाई गई हैं तीन कपड़ों में वो किसकी यादगार है वो कौन है ब्रह्मा विष्णु शंकर अभी हैं या मर गए
बेसिक वाला जो मूर्ति का चित्र है और एक एडवांस वाला है तो
बेसिक वाले में तो ज्योति धर्म की तीनों किरणें तीन में
है,
ज्योति किरणें तीनों में है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर
है,
तीनों तीनों पर किरण
है,
एडवांस में नहीं है, विष्णु में नहीं है,
है
इसका मतलब
मतलब दिखावा करना जरूरी है क्या? याग जो है वो दिखाई पड़ती है, स्मृति की डोरी दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है? हमारी स्मृति की डोरी लगी हुई है, हम बाबा को याद कर रहे हैं, तो वो किसी को दिखाई पड़ेगी क्या?
नहीं,
दिखावा करने वाले दिखावा करते हैं।
ब्रह्मा और शंकर का दिखावा इसका मतलब विष्णु का नहीं है?
विष्णु का भी है,
विष्णु का तो नहीं है इसमें,
उनका उनको थोड़ी याद करने से ही प्रैक्टिकल ज्यादा याद हो जाता है, या ज्यादा याद करते हैं ज्यादा ज्ञान लेते हैं? विष्णु का पाठ जो है वो ज्यादा ज्ञान लेने का है, ज्यादा याद करने का है, या कम याद करने और कम ज्ञान लेने का है? ज्यादा पवित्र नहीं बने तेसरे जन्म में तो ज्यादा याद भी क्यों करेंगे, और ज्यादा विचारी नहीं बने तो ज्यादा याद करने की उनको जरूरत क्या है? इसलिए विष्णु को वो स्मृति की डोरी ज्यादा लंबी नहीं दिखाई गई।
विष्णु का पाठ कब चलता है?
अब आठ पूरा हो रहा है क्या? सुनते नहीं हो अपने तरह?
वो तो है।
हाँ, तो आठ पूरा है तो पार्ट भी शुरू हो गया होगा।
वो तो सत्युग में चलना चाहिए उनका पार्ट।
सत्युग में चलना चाहिए। ये तीन मूर्तियों की जो यादगार है वो संगम युग की यादगार है या सत्युग में तीन मूर्तियां होती हैं?
नहीं, तो पालना तो अब पालना का टाइम थोड़ी।
पालना यहाँ से शुरू होगी या सत्युग से ही शुरू होगी?
नहीं, जो बर्फ में दबेंगे उनकी
बात में दबेंगे, वो तो बात की बात की कोई हिस्ट्री नहीं शास्त्रों में। यहाँ की हिस्ट्री है या सत्युग त्रेता की हिस्ट्री है? शास्त्रों में जो हिस्ट्री है वैकुंठ की वो कहाँ की है?
संगम
की हिस्ट्री है। शास्त्रों में जो विष्णु को दिखाते हैं, ब्रह्मा को दिखाते हैं, शंकर को दिखाते हैं कैलाश पर्वत पर, वो यादगार कहाँ की है?
संगम
की यादगार। सत्युग में विष्णु कहाँ से आया?
नहीं, अभी जैसे सब ये जो पाठ चलेगा 12 के बाद में 10 के बाद में
है,
तो विष्णु का जैसे सर्वनाश होगा।
विष्णु का सर्वनाश होगा?
नहीं नहीं, विष्णु का नहीं, जो शक्तियाँ विश्व का
है,
जो बर्फ में दबेंगे या बम्बार्डमेंट होंगे या शिव जी का इनका शंकर का जो पाठ चलेगा, पाठ तो खत्म होने के बाद में जो विनाश होगा वो तो अब
खत्म होने के बाद विनाश होगा।
अब जो विनाश कह रहे हैं साहब सर, 2010 के बाद विनाश है।
विनाश है 2010 के बाद? विनाश है
2012 या 10 के बाद?
2012 में स्थापना हो जाएगी?
स्थापना विनाश के बाद?
अरे पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा? पहले तो स्थापना होनी है, संगठन ऐसा तैयार होना है परिपक्व जिसको कोई तोड़ न सके।
2018
पहले तो ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना चाहिए ऐसा मजबूत जिसको कोई दुनिया में हिलाए न सके।
उसका टाइम बोल दिया था।
और कृष्ण का जन्म कब बताया?
वो तो 98
में बताया। 98 में तो जो जन्म है वो हद का जन्म है या बेहद का जन्म?
बेहद।
बेहद का कैसे? ब्राह्मणों का जो जन्म है वो दो तरह का जन्म होता है, तब उसको द्विजन्म कहा जाता है। 98 में जो कृष्ण का जन्म है वो पहला जन्म है या दूसरा जन्म है?
पहला
जन्म है। दूसरा जन्म तो तब होता है जब कृष्ण की बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि गीता का भगवान कौन है। अभी ब्रह्मा अथवा कृष्ण की बुद्धि में ये बात बैठ गई कि गीता का भगवान कौन है?
नहीं।
तो जब ये बुद्धि में बैठ जाएगा तब उनका जन्म भी होगा।
तो ये कब बैठेगा?
अब तुम पूरी सुनते ही नहीं हो, वाणिया भी सुनते मस्ती हो गए। वाणिया पूरी सुनोगे तो 20-20 बार उसका क्लेरिफिकेशन दिया इस बात का कि 2018 में संगम में कृष्ण की प्रत्यक्षता की जन्म होगा।
हम बोलिए बराबर सुनते हैं, हम योग करने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये परेशान करते हैं।
योग मत करो, याद करो।
याद तो दिन भर चलती है।
याद चलती है ना?
हाँ, चिंतन मंथन चलता है उसका।
चिंतन मंथन को याद नहीं कहा जाता।
बाबा की याद में
आपका बच्चा है, ये बच्चे को आप लंदन में पढ़ने के लिए बढ़िया स्कूल में भेज दें तो ये बच्चा कि याद आएगी या नहीं आएगी, या इसके इसकी इसकी जो है याद आएगी ना, याद में मुख्य बात तो चेहरा याद आता है कि नहीं आता है, चेहरा याद आता ही नहीं, तो चेहरा याद आएगा तो उसमें आत्मा आत्मा भी होगी कि मुर्दा होगा, आत्मा भी याद आनी चाहिए, तो याद करना है, याद योग 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 बोल दो, भूल जाना चाहिए, योग वाली बात ही खत्म करो।
बाबा जो मुझे में बोला है कि एडवांस वाले इसी शरीर से नरसिंहनारायण बनेंगे, तो ये शरीर तो छोड़ेंगे,
शरीर छोड़ देंगे,
नहीं शरीर
छोड़ रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, उन्होंने भक्ति मार्ग के संस्कार कोई 100% आ गया है, इसलिए शरीर छोड़ रहे हैं, भक्ति मार्ग के संस्कार जिनमें भी रह जाएंगे उनको शरीर छोड़ने पड़ेंगे, पीके वाले शरीर क्यों छोड़ रहे हैं, पीके वाले जो शरीर छोड़ रहे हैं क्यों शरीर छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें बाप का ज्ञान है ही नहीं,
वो अगरबत्ती जलाते हैं,
जब, जब बाप का ज्ञान ही नहीं है तो भक्ति में है ना, भक्ति में है इसलिए सही छोड़ रहे हैं,
परिवार में रहकर क्या होते हैं, दीपावली आ गई तो परिवार में रहकर दीपक भी जलाने पड़ेंगे, कैसे छोड़े
बाबा, अपनी अपनी आत्मा की पावर है, कोई पावरफुल आत्मा होगी तो अपने घर बार को सारे को चेंज करके रख देगी, या तो तुम नहीं या तो हम नहीं, धर्म पर ये पर धर्म धर्म में छोड़िए,
दीपावली पे दीपक जलाते हैं ज्ञान में चलने के बावजूद भी, तो चाहे दिखावा ही कर रहे हैं तो वो भक्ति मार हो गए हैं,
बिल्कुल हो गया, शरीर छोड़ना पड़ेगा, जरूर शरीर छोड़ना पड़ेगा, दीपक जलाना तो दूर की बात रही, मुरली में आया है तुम दीपावली जाकर छत पे देखेंगे थोड़े ही, तुम तो जानते हो हम तो सच्ची दीपावली मना रहे हैं, आत्मा रूपी दीपक जलाने,
सच्ची दीपावली तो आज मनाई
बाबा की
बाबा
खराब हो जा रहा
है,
हमारे में जैसे अंधेरा रहेगा
तो आज आज सच्ची दीपावली आपकी मन रही है तो झूठी तो नहीं मनाओ, छोटा थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, परिवार में रहते
हमारे अंदर के हमारे
अच्छा, हाँ जी
ये माता कह रही थी
बाहर तो जल गया, अपन घर वालों का तो नहीं जल पाओ, नहीं जलाएंगे तो
लड़ाई, तुम यहाँ ज्ञान में आते हो तो हंगामा नहीं करते, यहाँ ज्ञान में आते हो तो हंगामा करते कि नहीं, हंगामा नहीं करते, ज्ञान में आते हो तो हंगामा नहीं करते, बहु पवित्र रहती है तो हंगामा नहीं करते,
आने के लिए
हंगामा
नहीं करते,
आने के लिए हंगामा नहीं करते, और दूसरी बात करते
हैं, जैसे उनको जैसे उनकी मन को साफ करने के लिए मैंने भाजी पर जोड़ दिया, भीतर को नहीं जोड़ा, तो वो भी देखो
बाहर से हम भक्ति करते रहेंगे तो दुनिया वाले की बुद्धि में ये बात बैठेगी कि ये भगत हैं या ज्ञानी हैं, भगत हैं,
लेकिन हम अपने अंदर से तो ये सोचते हैं ठीक है अपने फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे,
माने घर वालों को चेंज नहीं करना है, ऐसे ही मर रखते रहो नाक रखते रहो इसी दुनिया,
पड़ोसी दीपक जलाए रख जाए तो क्या करे, पड़ोसी दीपक जलाए दरवाजा रख जाए तो मना थोड़े करें,
पड़ोसी
हाँ दीपक जलाए गेट भर
जाए, क्या
दूसरे वाले आके रख जाते हैं घर वाले,
हमने तो नहीं रखा,
हाँ
फिर क्या बात, पड़ोसी आकर के रख जाए तुम्हारे तुम्हारा क्या विकल्प है, हम किसी को भक्ति करने के लिए मना तो नहीं कर रहे,
नहीं मना नहीं,
ये भी तो ज्ञान है कि किसी को भक्ति करने के लिए मना नहीं करना है, भक्ति कोई करना चाहे, दीपक जलाना चाहे, दिवाली देखना चाहे तो उसको देखना दो, दीपक जलाने दो, हमको मना नहीं करना, लेकिन हम ना दीपक जलाएंगे और ना दिवाली देखेंगे, क्यों क्यों नहीं देखेंगे
सच्ची दिवाली?
क्योंकि हम तो अपने अंदर से देख रहे हैं कि ये आत्मा दीपक जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये जल रहा है, ये सारी हम जिसको देखते हैं जलता हुआ दिखाई पड़ता है, तो हम झूठे दीपक क्यों देख जलाएंगे?
ये बाबा ये भाव भी तो हो सकता है,
है?
ये भाव भी तो हो सकता है कि जैसे पर्वत को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, और वहाँ जो उसकी लीला जो देखते हैं परमपिता की, परमेश्वर की, जो देवता नहीं करते हैं, जो परम परमेश्वर
पहाड़ को देखना भगवान की लीला है
ना? नहीं, प्रकृति को देखने पे,
प्रकृति देखना, ये प्रकृति के जो रूप स्वरूप है उसको देखने से भगवान की लीला ज्ञात होती है।
ये तो होता है जिसने कैसे बनाया पहाड़ बीच,
मुसलमान लोग मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियाँ ने पहाड़ बनाया, अल्लाह मियाँ ने नदी बनाई, अल्लाह मियाँ ने दुनिया बनाई, अल्लाह मियाँ ने सारा, अल्लाह मियाँ ने दिल बनाया, अल्लाह मियाँ ने रात बनाई, अल्लाह मियाँ बनाता है ये सब।
ये संसार किसने बनाया?
संसार अनादि है या भगवान ने बनाया? अरे ये संसार, ये सृष्टि अनादि है या बनाया? अरे ये तो अनादि चला चला आया है। आत्माएं अनादि है या बनाई? आत्माएं अनादि है। ऐसे ही आत्माओं का जो रहने का स्थान है, ये सृष्टि पर पार्ट प्ले करने का जो स्थान है, वो भी अनादि।
भक्ति मार्ग में यही तो बताते थे,
भक्ति मार्ग की बातों को क्यों याद कर रहे हैं आप?
नहीं, परम पिता को याद करना तो प्रकृति को देखो उसने कैसे फूल किया है।
प्रकृति का काम प्रकृति करती है, आत्मा का काम आत्मा ही करती है, मनुष्यों का काम मनुष्य करते हैं, भगवान ये प्रकृति के दृश्य नहीं बनाता। और
छोटी छोटी लाइट है तो जला सकते हैं, जैसे
मैंने कुछ ना कुछ भक्ति करना है, पक्का कर लिया हमको शरीर ये तो पक्का कर लिया है कि कोई ना कोई तरीके से भक्ति करना है, शरीर छोड़ना है।
लाइट जलाना भक्ति थोड़ी होती है।
वो जो रोज लाइट जलाते हैं वो एक कमरे में एक दो बत्ती जलाते हैं, ढेर में ढेर तो नहीं जलाते। बच्चों को भक्ति करने से मना नहीं करना है, बच्चे जो भक्ति करते हैं उनकी भक्ति पूरी होने दो, लेकिन हम खुद भक्ति नहीं करते, हमने भक्ति छोड़ ही दी है। भक्ति मुर्दाबाद, ज्ञान जिंदाबाद, हम खुद ही भक्ति जिंदाबाद करते रहेंगे तो फिर हमें जो हम कर्म करेंगे हमें दे दूसरे करेंगे। हाँ ये जरूर है कि हम भक्ति नहीं करेंगे तो घर वाले हमको घृणा करेंगे, गालियां देंगे। हाँ बच्चे मेरा हराम जारी अम्मा है ये हमारी, ये जाने कहा कि तू सुन भूत प्रेत घुस गया घर में, भूतनी है भूतनी, भगवान को नहीं मानती। इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देने की ताकत नहीं है।
अरे बाबा ये बात और है, भूत प्रेत घर के बाहर के किरवटी ना काटे, जो फिर किरवटी ना काटे तो कैसे नहीं कैसे ज्ञान है, तो देवता नो ना माने
तो जो कहती है तो हमें कुछ चिपक जाता है क्या? वो कहती है तो तुमको चिपक जाता है? हम जो पूछ रहे तो बताओ, वो जो कुछ कहती है गालियाँ देती है गिलानी करती है, तुम्हारी
ज्ञान की गिलानी तो करे
तो करने दो, तो हमको क्या असर पड़ता है?
कैसे जाने दीपक जला में अगरबत्ती जला में आत्मा से दीपक जला
है, माने तुम उनसे प्रभावित होती है तो उनकी प्रजा बनना पड़ेगा। अगर उनकी बातों से प्रभावित हुई और तुमने उल्टा काम करना शुरू कर दिया ज्ञान के बरखिलाफ तो उनकी प्रजा जरूर बनना पड़ेगा। ये सोचना चाहिए कि हम कितने जन्म तक उनकी प्रजा बनेंगे, हमें भगवान बाप आके प्रजा बनना सिखा रहे हैं या राजघराने में जन्म लेना सिखा रहे
हैं? क्यों
हरी? हाँ
हाँ जी
कोई
भी
हो
हाँ
अगर कोई सुनता है
हाँ
सुनाना जरूर है ना
कई
लोग हर किसी को ज्ञान सुनाते हैं
हाँ तो अरे दुनिया कुछ भी कहती है हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है बिच्छू है बिच्छू की जाति का है बिच्छू जहाँ कहीं भी नरम देखेगा वहाँ डंक मारेगा मारेगा या नहीं मारेगा तो हम बिच्छू हैं या हम ब्राह्मण हैं तो हम अपना कर्म छोड़ दें क्या ब्राह्मणों का कर्म क्या है ना दूसरों के कहने से हम अपना धर्म छोड़ दें ब्राह्मणों का धर्म ही है सेवा करना कोई कुछ भी कहता रहे धर्म करिए पर धर्म न छोड़िए
बाबा ये बात सुनिए लेकिन इनका जो कहना है ना कोई भी पात्र हो सुनना चाहता हो उसमें समझ
संदेश देने की बात अलग और ज्ञान सुनाने की बात अलग संदेश दुनिया में सबको देना है एक एक मनुष्य मात्र को तीन बातों का संदेश देना है नई दुनिया आने वाली है माना सत्युग आने वाला है कलयुग पुरानी दुनिया जाने वाली है और भगवान नई दुनिया बनाने के लिए आ गया है संदेश खत्म
बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन दुनिया यही कहती है कि वही वो घूमती फिरती है नहीं तो उधर वो जो सुनाती रहती है समय स्थान देख करके ज्ञान सुनाना चाहिए
ज्ञान की बात कहाँ कर रहे हैं
नहीं ये
ज्ञान की बात नहीं कर रहे हम संदेश की बात कर रहे हैं संदेश सिर्फ तीन बातों का है
तो तीन बात ही सुनाए ना लेकिन अपन सड़क के ऊपर आधा घंटा ही व्यतीत कर दे
वो बात नहीं कर रहे वो तो संदेश देने की बात कर रहे
कहते कुछ भी है पर अनुभव तो मैं कर रही हूँ ना
क्या अनुभव कर रहे
बस वही बात यदि दीक्षा से उतरेंगे तो आधा घंटा वही व्यतीत कर देंगे
क्यों सुन बात व्यतीत कर रहे हैं संदेश दो मिनट में संदेश
जैसे वो मदारी खेल करता है ना तो झुंड इकट्ठा हो जाता है ऐसा कहीं ना सौ खड़े हो जाए तो सुने ना संदेश समझते ही नहीं
जो आदमी हमारा हमको अपोजिशन कर रहा है तो अपोजिशन करने वालों के बीच में बैठ करके हमको आर्गू करने की क्या दरकार है आर्गू करने के लिए मुरली में बाबा ने बोला है क्या
नहीं
बोला है तो कब बात खत्म
नहीं पर जो बात ज्ञान सुनना चाहिए उस समय सुनाए ना वातावरण तो देख के सुना
वो बात खत्म जहाँ आर्ग्यू करता हो आदमी वहाँ हमको नहीं सुनाना है लंबा लंबा हमें सिर्फ तीन बातों का संदेश देना है
यही मैं कह रही हूँ ना
भगवान आया हुआ है नई दुनिया बना रहा है पुरानी दुनिया खलास होने वाली है एटम बम बन चुके हैं
वो भी तो उसका मूड देख के बात कर रहे हैं
वो सबको संदेश कैसा भी मूड वाला हो ये संदेश सबको देना
अभी तो हम कलयुग को लाखों करोड़ों वर्ष बताते हो
बताएं लेकिन हम उनके कान में ये तीन बातें जरूर डाल दें
वो डाल
दें ताकि जब टाइम आएगा जब भगदड़ मचेगी तब उन्हें याद आएगा कि हमको किसी ने बताया तब वो भागेगा
नहीं उनको ये भी बता दिया आज से 100 साल पहले क्या था और आज क्या है
वो तो कहेंगे ऐसा हमेशा होता ही चला है जो विधर्मी आत्माएं होंगी बाबा की आधी बात मानती है आधी बात नहीं मानती है दुनिया को दिखाने वाली जो बात है वो तो मान लेंगे जो बात दुनिया को नहीं दिखाने वाली है आंखों से छुपी हुई है वो नहीं माने जो अपने फायदे की बात होगी वो मान लेंगे जो फायदे की बात नहीं होगी वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे तो वो विधर्मी आत्माओं की बात है उनको विदेशों में भेजा जाएगा जो विधर्मी आत्माएं हैं वो आधा ज्ञान मानती है और आधा ज्ञान नहीं मानती
विदेशों में कहीं नहीं भेजा
जाएगा क्योंकि वो ज्ञान पूरा नहीं मानती ईश्वर का ज्ञान जो पूरा नहीं मानते हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं कि नहीं तो कन्वर्ट होने वाले तो जाएंगे ही विदेशों
में
कुछ भी हो
बाबा जैसे आपने ज्ञान सुनाया किसी को पसंद आया उसने कहा हमें सुनाओगे मंत्री हाँ सुनाएंगे आपकी किताब पास किताब हो तो किताब दे दो हमने उनको किताब दे दी फिर दूसरे दिन आए वो तो हमारे यहाँ डेथ हो गई है और ऐसे ऐसे हम मतलब नहीं सुन सकते, तो जिस जगह पे और भी आदमी आते हैं क्या वो जगह चले जाएं?
क्या हुआ? बाबा तो कहते हैं जहाँ मौत हो गई हो, शमशान घाट में पहुँच गए हो ढेर के ढेर, वहाँ जाकर भी क्या सुनो?
जोरदबस्ती
है, कोई आर्गू कर रहा है नहीं मानता है तो जबरदस्ती क्यों सुनाना?
कोई इंटरेस्टेड है
तो सुनो, इंटरेस्टेड है वो सुने उसको सुनो। कोई भी हो, ज्ञान अकेले में सुनाना ज्यादा अच्छा है, दो पांच इकट्ठे हो जाए फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा। एक परिवार के हैं तो भी सुनाना अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं परिवार का मुखिया बैठा हुआ है, उसकी बात माननी पड़ेगी परिवार वालों को। ये कहाँ बोला मैं तीन मूर्तियों में आता हूँ? तुम तो बात को बदल रही हो, तीन मूर्तियों के द्वारा कर्तव्य भी कराता हूँ तो बात क्यों बदल रही है? ऐसे बातें बदलते बदलते सारा धर्म ही कन्वर्ट हो गया। कर्तव्य करता हूँ नहीं कराता हूँ, करण करावन हार भी हूँ, शंकर के द्वारा कराता हूँ, ब्रह्मा विष्णु के द्वारा कराता नहीं हूँ, ब्रह्मा विष्णु के द्वारा करण करण हार है, कराने वाला नहीं है, कराने वाला सिर्फ एक ही पाप है। तो भाई टाइम हो गया बहुत, 15 मिनट ज्यादा हो।